शांति। पल रहे हैं प्रभु प्यार में, ऐसा भाग्य और होगा कहां। भगवान को अपने प्यार में बांध लिया और क्या चाहिए। मैंने बाप को, भगवान को लाया, मैंने भगवान को लाया। भगवान किसके लिए आया? मेरे लिए आया। कौन से आंगन में आया? कौन से आंगन में आया? मधुबन के आंगन में आया। रामायण में दिखाया है जब भरत श्री राम को लेने वन जाता है अपनी माओं के साथ, तो सबसे पहले उसकी भेंट निषादराज से होती है, जो कि श्री राम जी का मित्र होता है, जिसके पास श्री राम रुके होते हैं। तो वो पूछता है निषादराज को कि श्री राम जी कहाँ रुके थे। तो वो बताता है कि यहां वो रुके थे, यहां वो सोए थे, ये वो जगह है जहां पर उन्होंने रात गुजारी थी। धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। वो भूमि धन्य है, वो आंगन धन्य है, जहां पर जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। जिस भूमि पर भगवान के पग ठहर जाए वो भूमि धन्य है। वो भूमि क्या है? महातीर्थ है। जैसे वो लोग चार धाम की यात्रा करते हैं, वैसे यहां ही वो चार धाम है। पिछले संडे की मुरली याद है ना? तो बाबा आज कहां पर आए हैं? मधुबन के आंगन में, जिसका सजीव चित्रण हमने सुबह सुना, जिस आंगन में उसके पग पड़े। वो आंगन कोई साधारण आंगन नहीं है। इस संसार की श्रेष्ठतम भूमि है, इस संसार का सर्वोत्तम तीर्थ है, मुकद्दस स्थान है। ऐसे स्थान पर वो आया है। होलीएस्ट बाप, पवित्रतम पाप किससे मिलने आया है? होली हंसों से मिलने आया है, पवित्र हंसों से, निर्मल हंसों से, प्रांजल हंसों से, शुद्धतम हंसों से। मिलने का समय कौन सा है और कैसा है? ये मिलन कैसा है? मेला कैसा है? कैसा मेला है ये? न्यारा मेला है, प्यारा मेला है, मधुर मेला है, विशाल मेला है, वंडरफुल मेला है, रूहानी मेला है, वैल्यूएबल मेला है। संगठन कैसा है? प्रभु प्यारों का संगठन है ये। ऐसे संगठन में वो आया है, स्नेह संगठन है ये। उसे बहुत प्रिय है, उसे अति प्रिय है ये मिलन। केवल तुम सर्वश्रेष्ठ आत्मा ही कर सकते हो, और इसी समय कर सकते हो। सारे कल्प में अगर महान समय है तो अब है। इसके लिए गायन है महान संगम युग। इसके लिए ये मिलन भी कैसा है? महान मिलन है, अमर मिलन है, अमर बनाने वाला मिलन है। हर एक बच्चा अमर भव का वरदानी बन गया है। रिस्पॉन्स, स्नेह का रिस्पॉन्स, बच्चों के स्नेह के रिस्पॉन्ड में बाबा मिलने आए हैं। और बच्चों ने क्या किया रिस्पॉन्ड में? सहयोग का संगठन, संगठन में बाबा इस मुरली में सेवाओं के बाद मिल रहा है। इसके पहले की जो मुरली थी, हम थोड़ा उसके ऊपर जाएंगे, वो थी जनवरी मास की, 18 जनवरी। तब बाबा ने क्या कहा था? महासेवा, महायज्ञ की सेवा, महाकार्य, उसके पहले क्या करना है वो तो करोगे ही, महादानी बनकर हल चलाओगे वाणी से, फिर बीज डालोगे, फिर पानी शीतल जल शीतलता के रूप से, और फिर फल निकलेगा। एक है वरदानी और दूसरा है महादानी स्वरूप। वरदानी स्वरूप अर्थात महादानी स्वरूप अर्थात केवल वाणी की परसेंटेज जिसमें ज्यादा है और मनसा की कम है। वरदानी स्वरूप अर्थात जिसमें वाणी की परसेंटेज कम है और मनसा की परसेंटेज ज्यादा है। तीनों ही शक्तियां, मन बुद्धि और संस्कार, तीनों ही शक्तियों पर अधिकार हो। जो अधिकार की कमी है तो महायज्ञ में स्वाहा करो, सारे दिन भर में शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो, और समय मिले तो सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप का अनुभव करो। बाबा ने कहा कि महायज्ञ की तो महासेवा जो है उसकी तो धूम मचाई है, बचाने वाले हो, ये वो सेवा थी, परंतु साथ साथ कौन सा यज्ञ रचो? ज्वाला रूप शांति कुंड, ज्वाला रूप शांति कुंड को रचो। मेजॉरिटी आत्माएं हैं, उनको अभी तो ये तो पता चल गया है कि जो अध्यात्म की शक्ति कर सकती है वो कोई और कर नहीं सकती। एक टांग उनके पास है, हिम्मत की टांग तुम्हें देनी है, लंगड़ों को चलाना है दौड़ की रेस में, लंगड़ी आत्माओं को दौड़ की रेस में लाना है। सेवाओं के लिए ये डायरेक्शन दी है बाबा ने, उस सेवा के साथ साथ ये भी करो। सेवा हुई, मेला हुआ, मेला होने के बाद सब यहां आ गए, तो भगवान ने क्या किया उनके लिए? जो भी मेहनत करके आए हैं, भगवान ने क्या किया? बधाई की, बधाई के पुष्पों की सबसे पहले क्या कर दी? वर्षा कर दी, और क्या कर दिया? पाव दबाए। क्या प्रश्न पूछा? थक तो नहीं गए? भगवान के इस वाक्य में ही क्या है? थकान की दवाई है। क्या पूछा? थक तो नहीं गए हो? कौन पूछ रहा है? जो थके हैं उनसे पूछ रहा है, परंतु पूछते पूछते ही इलाज भी कर दिया है। किसका? थकान का। आत्माएं, संसार की आत्माएं तो बहुत थक गई है, पर ब्राह्मण जब सेवा से थकते हैं तो भगवान उनके बाप का स्नेह ही पाव दबाता है। कौन पाव दबाता है? बाप का स्नेह पाव दबाता है। किसके पाव दबाता है? जिन्होंने क्या कर दिया? सेवा के मैदान में जो आ गए, एक सेवा के पहाड़ को जिन्होंने अंगुली दी, दो किनके पाव दबा दिए? किनके पाव दबाए? किनके पाव दबाए? कुंभकर्ण को जिन्होंने जगाया, उनके पाव दबाए। कैसे दबाए? स्नेह, याद, और सदा साथ की छत्र छाया के अंदर याद, प्यार से बाप दादा पाव दबा रहे हैं। भगवान सेवा कर रहा है, भक्ति में दिखाया है भगवान भक्तों की सेवा, भगवान भक्तों की भी सेवा करता है, ऐसे भी दिखाया। जो अनन्य भक्त थे उनकी सेवा भगवान स्वयं करता था, यहां भी वही दिखाया है। पिछले संडे की मुरली में भक्त भगवान की परिक्रमा करते हैं, यहां भगवान भक्तों की, बच्चों की परिक्रमा करते हैं, बच्चों की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा में बच्चों के साथ साथ है। तो मधुबन के इस आंगन में कितने साल पहले, 34 साल पहले, डाउन द मेमोरी लेन, चलो पीछे, अब मधुबन के आंगन में जाकर हम बैठेंगे। कौन कौन बैठा है हमारे साथ? विदेशी है, और कौन है? कर्नाटक है, और कौन है? उड़ीसा है, और कौन कौन है? मधुबन निवासी है, सेवा में आए वो सब है, और दादिया है। तो उस संगठन में हमको चलना है। मार्च का महीना है, साधनों का अभाव है, साधनों का अभाव, यातायात का अभाव, जहां अभाव है वहीं साधना तीव्र होती है। साधनों की बहुतायात में साधना की तीव्रता मंद होती है। जहां साधनों का अभाव है वहां साधना की तीव्रता है, वहां लगन की तीव्रता है। जो मेला हुआ उसकी सफलता का कारण क्या बताया बाबा ने? क्यों सफल हुआ? पांच कारण बताओ। सबसे पहला कारण, संगठन की शक्ति। संगठन की शक्ति ने क्या कर दिया? मुश्किल को सहज कर दिया। एक दूसरा कारण, दूसरा कारण लगन। कौन सी लगन? लगन कौन सी? लगन कौन सी? बाप का कार्य सो मेरा कार्य। इस लगन से, इस लगन ने क्या कर दिया? प्रकृति, कईयों की तबीयत भी खराब हो गई थी, सुबह सुना ना विदेशी भाई बहने, प्रकृति और कलियुगी आसुरी सांप्रदाय के विघ्नों को पार कर निर्विघ्न सेवा, निर्विघ्न कर दिया सेवा का कार्य। तो लगन कौन सी? जो बाप का कार्य सो मेरा कार्य, और इस लगन ने ही निर्विघ्न बना दिया। दूसरा कारण, तीसरा कारण जिसके वजह से सेवाएं सफल हुई, श्रेष्ठतम संकल्प। कौन सा संकल्प? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। केवल एक संकल्प सफलता का कारण, एक संकल्प है। अगर ये सोचते कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, केवल एक संकल्प, वो भी दृढ़ संकल्प, एक शक्तिशाली संकल्प, एक शक्तिशाली संकल्प ने ही सफलता को चरणों में ला लिया, बहुत सेवा हुई। चौथा कारण सेवाओं की सफलता का कारण, सहयोग, सबका सहयोग। एक तो संगठन, एक सहयोग, एक लगन और एक श्रेष्ठ संकल्प। पांचवा, यथार्थ सेवा किसको कहेंगे? कुछ दिन पहले वरदान था, त्याग और तपस्या, पर इस मुरली के आधार से हिम्मत, उल्लास, मेहनत, मोहब्बत। ज्यादा हो गए पांच से। यथार्थ सेवा किसको कहेंगे? कुछ दिन पहले वरदान था, श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना, एक। दूसरा, भावना प्रमाण फल देना। तीसरा, प्राप्तियों का मेवा। और चौथा, त्याग और तपस्या का कंबाइंड स्वरूप जहां है वह है यथार्थ सेवा। अगर ये नहीं है तो वो सेवा कैसी है? नामधारी। तो सेवा की सफलता का कारण बाबा ने आज क्या क्या सुना है? हिम्मत, उल्लास, मोहब्बत, मेहनत, संगठन, सहयोग, संकल्प और लगन। लगन, सभी को लगन है, सभी का एकजुट संकल्प है, सभी का संगठन है, जिससे मुश्किल से मुश्किल कार्य, सारे विघ्न जो है वो हट गए। इन तीन चार पांच छह कारणों से क्या हुआ? मेला सफल हुआ। यह मेला बाप दादा को अति प्रिय है, बाबा को यह मेला अति प्रिय है। क्या पाठ पढ़ा? प्रश्न पूछा है बाबा ने। बच्चों ने क्या उत्तर दिया? टॉलरेंस, सहन करना। सहन किया ना, तो बाबा ने क्या कहा उसके लिए? बाबा का क्या उत्तर था? कुछ नहीं है तो और भी करना पड़ेगा, ये तो कुछ सहन नहीं किया, सहन तो तुमको बहुत करना है। पाठ क्या पढ़ा? डबल लाइट और सदा एवर रेडी। और डबल लाइट बनने से क्या हो जाता है? एक दो तीन, डबल लाइट बनने से क्या हो जाता है? सहज सफलता मूर्त बन जाते हैं। दूसरा, जैसा समय जैसा सरकमस्टांस उसी प्रमाण सहज रीति से स्वयं को चला सकते हैं। दूसरा और तीसरा, डबल लाइट से क्या हो जाता है? मन में मगन अवस्था, डबल लाइट, हल्कापन। हल्कापन कहा ना आगे भी बाबा ने, पार्टियों से मुलाकात, सारा बोझ बाप को दे दो। पिछले संडे की मुरली, पिछले संडे के पिछले संडे, बाप कौन है? सागर। कोई भी बात आती है तो बाप को बीच में रखो। सागर में किचड़ा डालते हैं तो सागर किनारे पर लगा देता है, तो बोझ है तो बाप को दे दो। तो डबल लाइट, डबल लाइट से सफलता मूर्त, डबल लाइट से फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। जैसा समय जैसा सरकमस्टांस उसी प्रमाण स्वयं को सरल रीति से चला सकते हैं। और तीसरा, मगन अवस्था की प्राप्ति, हल्कापन, कोई बोझ नहीं, निर्बोझ निर्भार अवस्था। उसके बाद में क्या कहा बाबा ने? मुबारक दी, जो तुमने नहीं देखा वो हमने देखा। ये वाक्य क्यों कहा? ये वाक्य किसका है? सबसे पहले तो जिन्होंने इंग्लिश मुरली पढ़ी होगी उनको पता चलेगा, ये वाक्य किसका है? शिव बाबा का वाक्य नहीं है। ये है तो यहां पर शिव बाबा कह रहे हैं, परंतु ये वाक्य फर्स्ट जनरेशन का है। ये दादियों का वाक्य, जो हमने देखा वो आपने नहीं देखा। इसी वाक्य को बाबा दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं, जो हमने देखा वो तुमने नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारे पास साधनों का अभाव है। तुम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकते। बाप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो बाप तो जब चाहे जहां चाहे वहां जा सकते हैं। तो जो हमने देखा वो तुमने नहीं देखा। फिर किससे मिल रहे हैं बाबा? विदेशियों से, जो सामने बैठे हैं। सब कुछ कहां हो रहा है? इस आंगन में, वहीं पर भोजन भी हो रहा है, वहीं पर बाबा भी मिल रहे हैं। रह कहां रहे हैं? यहां वहां किराए से लिए हुए जगह पर। विदेशियों को क्या कहा? एक दिन आएगा जब ऐसा प्रोग्राम विदेश में भी होगा, भविष्यवाणी कर दी बाबा ने, होगा। और क्या कहा? स्वदेशी, कुंभकर्ण को जगाने वाले, अथक अथक होकर जगाने वाले। यहां पर ही बाबा ने पाव दबाने की बात कही है। भगवान स्वयं आकर पाव दबाता है, सेवा करता है, सेवाधारी बन जाता है। और इसी से संदर्भ में और एक चीज वहां पर कही बाबा ने कि नंबर वन का टाइटल सबको, बाबा सभी को नंबर वन का टाइटल दे रहे हैं। और एक बात कही, वो कौन सी? कि अभी जो सभा है, रचना तो बढ़नी ही है, वृद्धि तो होनी ही है। प्रत्यक्षता कब होगी? आबू रोड से माउंट आबू तक बैठेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अभी तो आबू रोड तक भी नहीं गए हैं, जब जाएंगे तब गायन होगा। 81 की मुरली है, अभी ओम शांति भवन भी नहीं है, अभी तो नीचे का कुछ है ही नहीं। तो जब नीचे तक जाओगे तो बाबा ने क्या कहा? तब गायन होगा। जब बाप आते हैं तो बच्चों की वृद्धि तो होनी ही है। इस यज्ञ को वरदान कौन सा है? जितना बनाएंगे उतना बढ़ते जाएंगे। उदाहरण दिया किसका, कौन सा उदाहरण दिया, मनु का उदाहरण दिया ना, मनु मनुष्य सृष्टि का पहला पुरुष शास्त्रों के आधार से, इसी के आधार से मनुष्य नाम निकला है या मानव नाम निकला है। जैसे उधर आदम है उससे आदमी निकला है, वैसे यहां पर भी मनुस्मृति ब्रह्मा का जो पुत्र है जिसे कि क्या कहा हुआ है, मनु दिखाया है ना। सबसे पहले तो मछली आ जाती है कमंडलू में, बड़ी हो जाती है रातों रात, तो फिर मटके में डालता है, वहां बड़ी हो जाती है, फिर वहां से निकालकर सरोवर में डालता है, फिर वहां से निकालकर नदी में डालता है, और बड़ी हो जाती है और वहां से निकालकर सागर में डालता है, तो सागर भी छोटा पड़ जाता है। फिर वो आश्चर्यचकित होता है कि विस्मय विभोर, वो पूछता है आप कौन हो, तो वो मछली प्रकट होती है और उसमें दिखाया है विष्णु का रूप। वो कहता है कि यहां पर अभी प्रलय होने वाली है 7 दिन के बाद, जैसा कि बाइबल में आर्क ऑफ नोहा दिखाया है वैसा इधर भी हर धर्म में कहीं ना कहीं प्रलय की चर्चा है। तो वो मछली, वो कहता है कि हर अनाज और जाति के प्राणी का एक एक बीज उस नाव में रख देना, और सप्त ऋषियों के साथ 7 दिन के बाद प्रलय होगी, जलमय हो जाएगी पृथ्वी, और तब उस जहाज को ये जो है ले जाएगा। और उसका अवतरण का एक दूसरा भी कारण बताया, एक राक्षस दैत्य है जिसका नाम हाइग्रीव दिखाया है कि जो वेदों को चुरा कर ले जाता है, उसकी हत्या करने के लिए भी भगवान स्वयं संसार में अंधकार छा जाता है। आध्यात्मिक अर्थ ले तो भगवान स्वयं आता है और संसार की जो चुनी हुई आत्मा उनको अपने जहाज में बिठाता है, और उस जहाज को वो मछली फिर खींच कर लेके जाती है, और एक नए सृष्टि की निर्माण, नए सृष्टि का निर्माण होता है। सागर के बच्चों को ईंट की दीवारें बांध नहीं सकती। हॉल छोटा पड़ गया, बाबा का कमरा छोटा पड़ गया, हिस्ट्री हॉल छोटा पड़ गया, मेडिटेशन हॉल छोटा पड़ गया, ओम शांति भवन छोटा पड़ गया, अभी है डायमंड हॉल, छोटा ही पड़ गया है। सागर के बच्चों को ईंट की दीवारें बांध नहीं सकती, रोक नहीं सकती, समा नहीं सकती, अव्यक्त महावाक्य बाबा के। कब कब किस किस को रोकोगे, जब बाप आते हैं तो बच्चों की वृद्धि तो होगी, वृद्धि नहीं तो सेवा काहे की, सेवा अर्थात ही वृद्धि। कितनी अच्छी परिभाषा दी, भगवान जब आ जाए तो सब आत्माओं को आना ही है। बाबा ने कभी कहा मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं सारे विश्व का बाप हूं, ये मत समझना कि मैं केवल तुम्हारा बाप हूं, मैं सारे विश्व के लिए आया हूं। जब बच्चे, अभी तो केवल बच्चे हैं, जब भक्त भी मिक्स हो जाएंगे तो क्या हाल होगा, अभी तो प्रबंध कर रहे हो परंतु बढ़ना है और बढ़ते जाएंगे, तब क्या करोगे, कैसे रोक पाओगे विश्व की आत्माओं को। फिर बाबा किससे मिल रहे हैं, भारत की ही आत्माओं से मिल रहे हैं, जो बहुत सुदूर उड़ीसा कर्नाटक से आए हैं। कैसे लगे बाबा को वो बच्चे, बहुत भोले और बहुत प्यारे, भोलानाथ बाप उनको विशेष स्नेह की दृष्टि देते हैं, जो अति भोले हैं, अति प्यारे हैं, ऐसे बच्चों को। फिर क्या कहा बाबा ने, भगवान को हमने बुला लिया उसमें आएंगे। फिर बाबा ने यहां पर होमवर्क दिया है, आज विश्व में संसार में क्या चाहिए लोगों को, सच्ची शांति। सच्ची शांति किसके पास है, हमारे पास। शांत अशांति के कारण बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे, अशांति कम नहीं होने वाली है, संसार में अशांति बढ़ते जाने वाली है। संसार में विकार बढ़ रहे हैं तो अशांति भी बढ़ेगी, संसार में अपवित्रता बढ़ रही है तो अशांति भी बढ़ेगी। शांति और सुख तो पवित्रता के बच्चे हैं ना, शांति और सुख पवित्रता की गोद में खेलते हैं, जहां पवित्रता रूपी मां ही नहीं है तो बच्चे कैसे रहेंगे। निधन के, कुछ दिन पहले था ना, तुम बेहद के ऑर्फन। तो संसार में अशांति बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी। उदाहरण उदाहरण दिए बाबा ने, दो बहुत सुंदर उदाहरण दिए। सबसे पहले जैसे आग लगती है तो क्या करते हैं, शीतल जल से आग को बुझाते हैं और गर्म वातावरण को शीतल करते हैं। उसी तरह तुम्हारा कौन सा स्वरूप इमर्ज हो, मास्टर शांति का सागर, यह स्वरूप इमर्ज हो, इसका अनुभव भी कराना है। लास्ट में कहा ना, प्रयोग भी करना है, आत्माओं पर प्रयोग करना है, अभ्यास भी करना है कि मुझसे शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है। देखना है कहां तक फैल रही है, नजदीक फैल रही है या दूर फैल रही है, दूर की आत्माओं तक भी जा रही है। और अशांत आत्माओं पर इसका प्रयोग करना है कि उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अभ्यास करना है। बाबा ने यह भी कहा कि आजकल जो आत्मा है जो थोड़ी शांत है, जो अशांत नहीं है, परंतु किस वातावरण में है, अशांति के वातावरण में है, उस अशांति के वातावरण का वायुमंडल का भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। अशांति में भी एक तनाव है, चलते खाते रहते कार्य करते सब कुछ करते हुए जैसे कि वो अशांति प्रभावित करती है, वो शांत बैठ ही नहीं सकते क्योंकि अशांति का वायुमंडल है चारों ओर। थोड़ा बहुत जो शांति प्राप्त कर लिए, चाहे भक्ति से या थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता से, परंतु वातावरण ही ऐसा अशांत है, आग लगी है वहां अशांत, चारों तरफ आग ही आग है। ऐसे वातावरण में मास्टर शांति का सागर हम हैं। इस संसार में शांति लाने के निमित्त हम हैं, शांति दूत, शांति देवा, शांति स्वरूप के चुंबक। चुंबक क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करता है, मैग्नेटिक फील्ड। वैसे इस सारे संसार में अगर कहीं से शांति मिल सकती है तो केवल इन थोड़ी सी आत्माओं के पास ही वो है। जैसे उदाहरण कौन सा दिया, रोशनी। जैसे रात की तारीकी में, रात के अंधकार में कहीं रोशनी है तो वो सबको आकर्षित करती है अपने तरफ। वैसे ही इस संसार में चारों ओर जहां घटाटोप अंधकार है, तिमिर है, उस अंधकार में केवल तुम ही एक प्रकाश फैलाने वाले हो। तो हम सब कौन है, शांति स्वरूप के चुंबक। हम सब कौन है, मास्टर शांति के सागर। हम सब कौन है, शांति देवा। भक्त भी पुकार रहे हैं ना, हे शांति देवा। पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें भी झगड़ा होता है। वो कहता है हमारी जो तरीका है शांति लाने का वो सही है, दूसरा कहता है ये सही नहीं है, हमारा सही है। उसमें भी वाद विवाद, उसमें भी चर्चा है, का किस लिए और होता क्या है। शांति इतनी सस्ती नहीं है कि कोई कॉन्फ्रेंस कर लो और मिल जाए। मन की शांति यहां पर सस्ती है, 10 पैसे में थी। तो बाबा ने कहा इस स्वरूप को इमर्ज करो, इसका अभ्यास करो, इसका प्रयोग करो। संसार में रोज अमृत वेले अशांत आत्माओं को इमर्ज करना है और उन्हें शांति की सकाश देनी है, शांति की किरणें फैलानी है। मंडे का वरदान, सोमवार का वरदान, तपस्या मूर्त की क्या परिभाषा दी थी बाबा ने, तपस्या मूर्त अर्थात शांति की शक्ति, शांति की किरणें चारों ओर फैलती हुई, अनुभव कराओ आत्माओं, अनुभव हो, ये तपस्या की परिभाषा दी थी। मैं शांति कुंड हूं। शांति के क्या क्या समान निकल सकते हैं, मैं शीतला देवी हूं, मुझसे शीतल किरणें चारों ओर फैल रही है, एक मैं शांति का फरिश्ता हूं, मैं शांति का देवता हूं, मैं अवतार हूं। मेरा अवतार ही किस लिए हुआ है, शांति स्थापन करने के लिए। इस संसार में जब चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, जो दिखाते हैं भक्ति में, देवताएं सारे जाते हैं विष्णु जी के पास, अभी कुछ करो, तो फिर वो अवतार लेता है। तो संसार में जब अशांति थी तब हमने अवतार लिया इस धरती पर, इस धरा पर। हमारा आना, हमारा प्रागट्य हुआ है यहाँ पर, हम ऐसे ही नहीं आए हैं। एक बहुत बड़ा लक्ष्य, स्वलक्ष्य और स्वलक्षण, लक्ष्य लेकर आए हैं। सारे विश्व में शांति स्थापन करनी है। आग लगी है संसार में, बुझाने वाले फायर ब्रिगेड है हम, अशांति की आग। तो मैं शांति कुंड हूं, और शांति के समान शांति की चिड़िया क्या करती है? उड़ती रहती है। शांति का संदेश लेकर आई हूं, शांति का मैसेंजर हूं, पीस मैसेंजर हूं। शांति दूत, शांति देवी, शांति देव, शांति देवा, शांति का पुंज, शांति का, शांति की गंगोत्री हूं। मुझसे शांति की सरिता बह रही है संसार में। तो दूसरों को शांति वही दे सकता है जो स्वयं शांत है, जिसके स्वयं के संकल्प शांत हो गए हैं। इस संसार की सबसे ज्यादा सेवा वो आत्मा कर सकती है जिसके संकल्प कम से कम है, जिन आत्माओं में संकल्पों का अभाव है, वो विश्व को सर्वश्रेष्ठ शांति की किरणें दे सकते हैं। जहां संकल्पों का बहुल्य है वहां शांति नहीं हो सकती है। कम से कम संकल्प, श्रेष्ठतम संकल्प, शुद्ध संकल्प, पावन संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, एलिवेटेड थॉट्स, स्वमान के संकल्प, वहां स्वतः ही शांति की किरणें फैलती है। उसको ये अभ्यास भी करने की आवश्यकता नहीं कि मैं, जैसे ये लाइट कहता है कि मैं लाइट हूं और मुझसे अभी प्रकाश फैल रहा है, वो है और वो स्वतः ही फैल रहा है। वो हीटर नहीं कहता है कि मुझसे अभी ऊर्जा उष्मा फैल रही है और कमरे को तपा रही है, वो बस है। वैसे ही जैसे ही हम अपने शांति स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, स्वतः ही शांति की किरणें निकलने चालू हो जाती है। स्वतः ही जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है, वो शक्ति उसमें भरना चालू हो जाती है और शक्ति उसमें से निकलना भी चालू हो जाती है। खजाने भरने चालू हो जाते हैं और खजाने बांटो और बढ़ाओ, मास्टर विधाता की अवस्था स्वतः ही आ जाती है। केवल उस आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है, स्वस्वरूप, स्वदेश। सात बातें धारण करो और सात बातें छोड़ो, 69 की एक मुरली है। स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण, सुकर्म और स्वदर्शन। सात बातों को धारण करो, पांच विकार, आलस्य और भय को छोड़ो। सात बातें धारण करो और सात बातें छोड़ो तो शीतला देवी बन जाएंगे। काली विकारों के ऊपर काली, तो बाबा ने विदेशियों से बात की, फिर जो भारत के आए हुए थे, अच्छा नहीं वो तो हो गया, हम थे शांति, इस पर शांति। आगे क्या कहा शांति के लिए बाबा ने? और मनसा संकल्प, ऐसा पावरफुल स्वरूप हो, मनसा संकल्प द्वारा किरणें फैलाओ, ऐसा पावरफुल स्वरूप हो कि जिससे शांति की किरणें फैले। फिर ये दो उदाहरण दिए वहां पर। तो ये इस वर्ष का होमवर्क है, जो पिछले संडे कहा था ना, ज्वाला रूप शांति कुंड की रचना करो, जिसका वायुमंडल और वाइब्रेशन चारों ओर धूम मचाए। केवल वाणी की सेवा नहीं, ये भी सेवा करो, क्योंकि आत्मा को ये तो समझ में आ गया है कि यही मिलने वाला है, परंतु इतनी शक्ति नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। इसके लिए उनको हिम्मत भी देनी है, सब कुछ उनके लिए हमें करना है, उन्हें शक्तिशाली भी बनाना है, शांत भी बनाना है। भिखारी है संसार की आत्माएं, और संसार में जो भी साधु संत योगी तपस्वी, वो खुद ही दुखी है। कुछ दिन पहले था ना, साधु भी पागल हो जाते हैं, कल परसों ही था मुरली में, वो भी दुखी है, वो भी दुख है। जैसे पति का, पत्नी का, पति मर जाता है तो वो अकेली हो जाती है, दुखी हो जाती है, दुर्भाग्यशाली हो जाती है। वैसे संसार में तथा कथित सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर कहो या जो धर्म गुरु, वो सब भी शक्तिहीन है इस समय, वो भी मांगने वाले है, वो भी भिखारी है, दो भिखारी आपस में आए तो दोनों का भी कल्याण नहीं हो सकता है। फिर क्या कहा बाबा ने, विदाई का तो हो गया, हमने बोल दिया। उसके बाद में कहां से चालू करें, कितनी पार्टियां हैं, पांच। कहां से चालू करें, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, पहले से चालू करते। तलाक बाकी है, तलाकनामा। क्या करो, माया को तलाक दे दो। पर तलाक के लिए दोनों की सहमति चाहिए रहती कि एक की। हाँ। एक सेठ जी इसके पास जाते हैं, वकील के पास, और वो कहते हैं कि मेरी वो पहले तो वो पंडित जी के पास जाते हैं, वो कहता है नहीं, हाँ वकील के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पत्नी को तलाक देना है। तो बोलते हैं उसका, वो तो कहता है ये तो बहुत बड़ा काम है, उसकी पत्नी का नाम होता है कामिनी देवी। तो कहता है ये तो इसमें तो केस बहुत लंबा चल सकता है, 20,000 रुपए का खर्चा आएगा। बोलते 20,000, वो पंडित जी ने तो 8 आने में मेरी शादी हो गई थी। तो कहता है ये 20,000 कैसे लगेंगे, वो कहता है फ्री में लिया ना, फ्री में ही मिला था तुमको, और शादी किससे की थी, कामना से शादी की थी। वो शादी तो तुरंत हो जाती है कामना से, परंतु छुट्टी जल्दी नहीं होती है, इतने जल्दी तलाक नहीं देती है, वो तो पड़ी रहती है, इच्छाएं तृष्णाएं वासनाएं आत्मा को पकड़ी रहती है। तो बाबा ने कहा संकल्प भी, संकल्प में भी माया खत्म, ऐसा तलाकनामा दे दो। ऐसा तलाकनामा दे दो तो क्या हो जाएंगे, माया जीत, क्या हो जाएंगे। ऐसा तलाकनामा दे दो, यही पूरा किया। और बाबा ने कहा सिकिल दे, क्या कहा, तुम लकीस्ट आत्मा है, बाप ने तुमको ढूंढा है, दूर दूर से ढूंढा है, कहां कहां पड़े थे पता नहीं, एक एक को ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, ये जो मेला किया उसमें जो ज्ञान में आए उनके लिए ये सारा था, इतना सारा कितनी मेहनत करनी पड़ी सबको, बाप को भी और बच्चों को भी। वो तो कहते हैं थोड़ा सा भी, जैसे राम जी का जो सेतु बना था उसमें एक छोटी सी स्क्विरल गिलहरी, उसने भी पत्थर लगाए थे, उसका भी गायन है भक्ति में, उसने भी सहयोग दिया था। तो भगवान तो कुछ दिन पहले मुरली में था ना, चना मुट्ठी चावल सुदामा के, परंतु बाप दादा को ये क्या लगते हैं, याद करो साकार मुरली 3 दिन पहले की, हीरे जवाहर, जिन्होंने क्या दिया था, केवल चावल मुट्ठी दिया था, पर बाबा को वो क्या लगते हैं, हीरे जवाहर। बाबा भावना को देखता है, किस भावना से सेवा कर रहे हैं, उस भावना को वो देखता है। वो बाकी बाप वैल्यू किसकी है, स्नेह की, चीज की नहीं, वरदान था ये भी कभी। तो लकीएस्ट हो, बाबा ने ढूंढा, दूर दूर से ढूंढा, इसके लिए तुम सब कैसे हो, स्वयं सदा स्वयं को सिकिलदा समझो, पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप, सदा अपने आप को कहां समझो, याद की छत्र छाया में, सदा कहां समझो, याद की छत्र छाया में। इसमें 3 बातें हैं, सबसे पहला तो कंबाइंड वाला, दूसरा बात है बोझ बाबा को दे दो, और तीसरी बात है अमृत वेले क्या करो। सबसे पहली बात, जब भी कोई समस्या आ जाए तो स्वयं को क्या समझो, अकेला नहीं समझो, बाप साथ है, बाप कंबाइंड है, तो घबराएंगे नहीं, अकेला नहीं समझेंगे, और मुश्किल सहज हो जाएगा, ये 3 चीजें हो जाएगी। अगर बाप को कंबाइंड समझेंगे, बाबा को सदा साथ समझेंगे, बाप की छत्र छाया के अंदर समझेंगे, तो फिर दूसरा, कभी कभी जो बोझ हो जाता है, ऐसी बात होती है तो बोझ भी बाप को दे दो, बाप बड़ा है और तुम छोटे बच्चे हो, तो बोझ बड़ों को दे दो, बाप को दे दो, तो हल्के हो जाओगे। उसके बाद में हल्के हो जाओगे, खुशी में रहेंगे, फरिश्ते की तरह डांस करते रहेंगे 24 घंटे, क्या करते रहेंगे, मन से डांस करते रहेंगे, और सवेरे सवेरे अपने फरिश्ता स्वरूप को धारण करो और नाचते रहो। नाचेगा कौन, जो हल्का है, नाचना आता नहीं और आंगन को दोष देने से क्या फायदा? अगर नाचना ही नहीं आता है, वो खुशी नहीं, तो आंगन को ही दोष देंगे, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये इधर ठीक नहीं, ये उधर ठीक नहीं। पहले तो आंगन को ठीक करो, फिर देखेंगे नाचने का। तो अंदर वो खुशी हो। उसके बाद में फरिश्ते की दुनिया को याद करो, तो फरिश्ते की दुनिया में चले जाएंगे। दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, पुण्यात्मा। पुण्यात्मा सदा स्वयं को क्या समझो, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूं। जहां लाइट नहीं है वहां ही पाप होता है, जहां अंधकार है वहां पाप होता है, जहां प्रकाश है वहां कोई पाप नहीं होता। इसके लिए स्वयं को क्या समझो, सदा लाइट हाउस हूं, माइट हाउस हूं। तो सदा स्वयं को पुण्य आत्मा समझते हो, पुण्य आत्मा के बच्चे, पुण्य आत्मा। पाप जहां है वहां पर बाप नहीं, पाप जहां बाप है वहां पर पाप नहीं, तो कहां खड़े हो? बाबा ने पूछा है, कहां हो, किसके साथ हो? मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। कितना अच्छा समान है, मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। पांच माताएं बोलो कोई भी इसको, मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता, या यहां से कोई भी, मैं आत्मा हूं नहीं, मैं पुण्य आत्मा हूं। जोर से बोलो, मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। फिर से बोलो, सबने इकट्ठा बोल दिया, ठीक है। तो संकल्प में भी नहीं और स्वप्न में भी नहीं। बाबा बात कौन सी कर रहे हैं, संकल्प और स्वप्न की बात कर रहे हैं। विचार इतने शुद्ध हो, विचार जो पिछले संडे कहा था ना, शुद्ध सागर, संकल्पों के सागर में लहराते रहो, ऐसे जब संकल्प होंगे, श्रेष्ठतम संकल्प, समान के संकल्प, तो पाप स्पर्श भी नहीं करेगा, हिम्मत नहीं है पाप को आने की। ऐसे हमारे शुद्धतम संकल्प हो, इतने श्रेष्ठ संकल्प हो, मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता, यह दृढ़ प्रतिज्ञा। उधर भी कहा, संकल्प में भी माया ना आए, वो है तलाक। यहां क्या कहा, पाप संकल्प और स्वप्न में भी ना आए, ये है दृढ़ संकल्प, ये है पुण्य आत्मा। तो यहां पुण्य आत्माओं का दृढ़ संकल्प की तेली से 21 जन्म के लिए पाप को समाप्त कर दो, ये कार्य दिया है। चौथा, बाबा के दिए हुए टाइटल तो याद है ना, सबसे पहला टाइटल सुदर्शन चक्रधारी। लास्ट संडे की मुरली में सबसे पहले दिव्य जन्म मिलते ही सबसे पहला वरदान कौन सा दिया बाबा ने? लास्ट संडे की मुरली, दिव्य जन्म मिलते ही सबसे पहला वरदान बाबा ने कौन सा दिया? 20 जनवरी 1981, जो हो जैसे हो मेरे हो, बिना सोचे समझे, चाहे अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, बड़ी पोजीशन पे हो साधारण हो, किसी भी धर्म का हो किसी भी देश का हो, बीमार हो तंदुरुस्त हो, बच्चा हो वृद्ध हो, पढ़ा लिखा या अनपढ़, बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया, अपना बना दिया। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, बाप के दिए हुए टाइटल याद है, सबसे पहला टाइटल कौन सा दिया है? स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो मायाजीत बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते कहीं परदर्शन चक्र तो नहीं फिराते हो, चलाते हो? स्वदर्शन चक्र जो धारी जो है वही स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे, वही विश्व राज्य अधिकारी बन जाएंगे। जो स्वराज्य अधिकारी के लिए फिर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। कौन माता कह रही थी कंट्रोलिंग पावर, जब से यहां है वो। तो स्वराज्य अधिकारी के लिए क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर की परिभाषा, जब चाहो, जब जहां चाहो कर्मेंद्रियों को कार्य में लगा सको, ऐसी यह है कंट्रोलिंग पावर। कार्य करा सको, मतलब कर्मेंद्रिय जीत बनना। स्वदर्शन चक्रधारी, कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, ये स्वदर्शन चक्र की चक्रधारी की परिभाषा है। चौथा ग्रुप, चौथा या पांचवा, चार हो गए ना, पांचवा, जो भी ड्रामा में हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। जो हो रहा है होने दो। बाबा ने निश्चय की परिभाषा दी है, चार पांच परिभाषा। निश्चय किसको कहेंगे? जब बाप साथ है, बाप का हाथ और साथ है, तो अकल्याण हो नहीं सकता। निश्चय की परिभाषा क्या दी आशीष भाई? निश्चय के लिए क्या कहा बाबा ने? बाप कल्याणकारी है, युग कल्याणकारी है, तो अकल्याण हो नहीं सकता। ये अगर याद रहे तो स्टेज ऊंची रहेगी। नहीं, निश्चय के लिए क्या कहा? किसको निश्चय कहेंगे? ये है निश्चय। अगर कोई नुकसान हो जाए तो नुकसान में भी क्या दिखाई दे? फायदा। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, ये है निश्चय। एक दूसरा निश्चय, बात बदल जाए पर हम न बदले, ये है निश्चय। और निश्चय, साक्षीपन की सीट पर रहो, कृष्णा माता। और एक बात है, जो हो रहा है उसे होने दो। बाप साथ है, बाप जहां हमारे, तो और कौन क्या कर सकता है? क्या है वो? जहां बाप है, जहां बाप साथ है, वहां कौन क्या कर सकता है? तो ये है निश्चय। ये सारे निश्चय की परिभाषा। बाप हमारा, हम बाप के, वहां और क्या, कौन क्या कर सकता है, इस तरह से कुछ है शायद। तो ये सारी निश्चय की परिभाषा दी बाबा ने। तो ड्रामा में जो भी हो रहा है कैसा है? सब कुछ कल्याणकारी। 24 घंटे में कम से कम एक या दो बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स हमको बुद्धि में एक बार रिवाइज करनी है। जैसे कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा में अकल्याण हो नहीं सकता, अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छुपा हुआ है। जो हो रहा है वही सत्य है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा बहुत अच्छा, अच्छे से अच्छा होगा। और ड्रामा की पॉइंट में, ड्रामा में जो भी हो रहा है सब, ये ड्रामा किसको पसंद है? बाप को पसंद है तो तुम बच्चों को भी पसंद आना चाहिए। ये ड्रामा एक्यूरेट है, इस ड्रामा में अदली बदली नहीं हो सकती, ये ड्रामा में नथिंग न्यू, ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, वही हो रहा था जो पहले हुआ था, ये ड्रामा सत्य है, न्यायकारी है, कल्याणकारी है। यहां इस ड्रामा में सभी एक्टर्स कैसे हैं? सभी एक्टर्स कैसे हैं? केवल निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष, सारे झगड़े समाप्त। इस ड्रामा में सभी एक्टर्स संपूर्ण निर्दोष है। हरेक का अपना अपना पार्ट है, हरेक का अपना अपना भाग्य है, हरेक अपना अपना भाग्य लेकर जन्म लिए हर आत्मा। इसके लिए हमें दुखी नहीं होना है, रोना नहीं है किसी के लिए, क्योंकि हर आत्मा अपना पार्ट, अपना भाग्य लेकर आई है। किसी को कितना भी समझाओ वो तब तक नहीं आएंगे जब तक उसका पार्ट इधर खींच के नहीं लाए उसे। और क्या कहा? और ड्रामा के बारे में क्या पॉइंट्स है? ड्रामा माँ है तो क्या करो उसका? माँ को ड्रामा ढाल है। बाबा ने ऐसे तीन चित्र, तीन व्यक्ति कहो उसको, या ऐसे निर्माण किए। सबसे पहला ड्रामा जो निराकार है, वो कहाँ है, क्या है, वो पता नहीं। दूसरा माया, वो क्या है, कैसा है, वो भी निराकार है। तीसरा है कुदरत। कई बार मुरलियों में आता है, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है, ये है कुदरत। तो ये कुदरत एक निर्माण किया, एक ड्रामा निर्माण किया है, और एक माया, तीनों ही निराकार। तो ये ढाल है। अच्छा, तो 24 घंटे में एक या दो बार अमृत वेले के बाद और शाम को एक बार ड्रामा की ये सारी पॉइंट्स रिवाइज करना, क्योंकि ड्रामा की पॉइंट ही हमको परिस्थितियों में अचल अडोल बनाकर रखेगी। फिर यहां पर है साक्षी स्थिति, साक्षी स्थिति की सीट। ये क्या है? बाबा ने कहा जैसे कि शान की सीट है। ये शान की सीट से परे अगर हो जाते हैं तो परेशानी, परे अगर ना हो तो परेशानी खत्म, अगर परे ना हो तो परेशानी खत्म। नहीं तो बाबा ने प्रश्न पूछा है, परेशान तो नहीं होते हो? किस किस बातों से परेशान होते हो? वातावरण, घर, ब्राह्मण परिवार, संगठन, सबसे ज्यादा परेशान किससे होते हो? चारों में से ब्राह्मण स्वयं से ही परेशान हो जाते हैं, साथियों से। तो बाबा ने कहा साक्षी स्थिति पर स्थित रहो। जो साक्षी स्थिति में स्थित रहते हैं, समस्या उनके पैरों के सीट के नीचे दबकर भस्म हो जाती है। तो अभी हम अभ्यास करेंगे, सभी अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना है और प्रयोग करना है। बाबा ने जो कहा ना, अभ्यास करो कि मुझसे शांति की किरणें दूर दूर तक पहुंच रही है। इस हॉल से निकलकर मधुबन में, मधुबन से निकलकर आबू में, आबू से निकलकर सिरोही में, सिरोही से निकलकर राजस्थान में, राजस्थान से निकलकर भारत में, और भारत से निकलकर एशिया खंड में, और एशिया खंड से निकलकर संपूर्ण विश्व में, कायनात में। फिर बाबा ने एक दृढ़ संकल्प दिया, कौन सा? ना खुद परेशान होंगे और ना ही परेशान करेंगे। तो इस सारी मुरली से कौन कौन से समान निकले उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो मैं होली हंस हूं, दूसरा सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं संसार की, उसके बाद शांति देवा मास्टर शांति का सागर हूं, और स्वदर्शन चक्रधारी हूं, और नंबर वन आत्मा हूं, नंबर वन प्राइज लेने वाली आत्मा हूं, और श्रेष्ठ और पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं, भाग्यशाली आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, माया को तलाक देने वाली आत्मा हूं, और सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ, डबल लाइट हूँ, एवर रेडी हूँ, साक्षी हूँ, साक्षी की सीट पर सेट हूँ, सफलता मूर्त हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, अच्छा, स्वराज्य अधिकारी, विश्वराज्य अधिकारी, कर्मेंद्रिय जीत, स्नेही, और हो गया, बाप को बुलाने वाली आत्मा हूँ। वो उधर महाभारत में दिखाया, कुंती को वरदान था, जिस भी देवताओं का आह्वान करो वो आ जाए। हमको वरदान है, जब भी बाप को बुला तो बाप आ जाता है। जी हुजूर, हाजिर। वरदान सिकिल अदाओ, अति प्रिय वरदान आज का सहनशीलता। कितनी बार सहन करना पड़ेगा? 10 बार भी सहन करना पड़ेगा, रावण से भी तेज विरोधी आ जाए तो भी सहन करो। उसका फल कैसा है? अविनाशी और मधुर। मधुर या मीठा? फल कैसा होता है? मधुर। बाबा ने मधुर बोला है। तो सहन करना अर्थात ये नहीं कि इसने, ये भी तो कुछ सहन करे कि हम ही सहन करें, ये सहनशीलता नहीं है। बाबा ने कहा ना मुरली में, सहनशीलता का पाठ अभी पढ़ना बाकी है तुमको, वो तो पढ़ते रहेंगे। तो यहां वही कहा है, बहुत सहन करना है। तो समा लेना, कमजोरियों को क्या करना? सामना नहीं करना दूसरों की, क्या करना? उनको समा लेना। स्लोगन, बीत गई सो बात गई। हाँ, क्या करो उसको? फिर आगे के लिए सावधान रहो। और कोई एक हफ्ते की मुरली से कोई पावरफुल पॉइंट किसी को याद है तो सुना दो। हाई जंप लेना है, विघ्नों को तोड़ना नहीं है, उसे पत्थर हथौड़ों से हाई जंप लेना है। और पुरुषार्थ क्या है तुम्हारा? अभी अभी जाना और अभी अभी आना। और दिल से दिन रात क्या कहते रहो? बाबा 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 बाबा। तो क्या हो जाएगा? बाबा का सिंहासन उधर डोलने लगेगा और कहेगा कौन है ये जो मुझे पुकार रहा है, अभी मुझे जाना ही पड़ेगा। और कोई पावरफुल पॉइंट? बहुत सारी पावरफुल है। बाबा ने पढ़ाई के लिए क्या कहा? पढ़ाई पढ़नी है, मुरली पढ़नी है उसके ही, नहीं तो मार्क प्रेजेंट मार्क कब लगेगी? बाप गुहे गुहे पॉइंट सुनाते हैं। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट आत्माभिमानी बनना। और ज्ञान बड़ा या ज्ञान अच्छा या योग अच्छा? योग से क्या होता है? बल मिलता है, आत्मा शक्तिशाली बनता है। और ज्ञान क्या है? नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। और दुख सहन करने में तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया। और रोना नहीं है। रोने वाले को बाबा क्या कहते हैं हमेशा? विधवा। कोई कोई सुपर विधवा भी है। मांगना नहीं है तुमको। क्या क्या नहीं मांगना है? चंदा चिरी। क्या नहीं मांगना है? रहम कृपा आशीर्वाद मांगना नहीं है। और क्या नहीं मांगना है? पैसे नहीं मांगना है। बाबा की सख्त मना है। कितना अच्छा शब्द है, इन्वर्टेड कॉमा कोष्टक ब्रैकेट, बाबा की सख्त मना है। जो भी चीज हमें छोड़नी है, जो भी हमको लगता है श्रीमत के विरुद्ध है, ये वाक्य को अपने मन में रखो, बाबा की सख्त मना है। तो संकल्प दृढ़ता आएगी संकल्प में। और क्या कहा? मांगने से मरना भला। और ऐसा ऐसा खुशी में रहो कि रोंगटे खड़े हो जाए, रोमांच खड़े हो जाए, रोआ रोआ पुलकित हो जाए जिसको कहते हैं। और जो अच्छे पुरुषार्थी है उन्हें अच्छा नशा रहता है। रियल नशा किनको रहता है? जो याद के पुरुषार्थी है उन्हें रियल नशा रहता है, ऐसा है वो। और वो मेले मैला बनाते हैं और ये मेला स्वच्छ बनाता है। स्वच्छ बाप आए हैं तुम्हें स्वच्छ बनाने के लिए, तो स्वच्छ बाप को याद करो तो स्वच्छ बन जाएंगे, स्वच्छता भी आ जाएगी। और बाप है जोहरदाल तरवार, बाप है भोला भंडारी, बाप है रहमदिल बादशाह, बाप है गरीब निवास। चार समान थे उस मुरली में, समान नहीं बाबा के नाम टाइटल। जैसे मैं हूं वैसे तुम हो, जैसे मैं अपने आप को आत्मा समझता हूं तुम भी समझो। आगे का लाइन था मैं हूं परमात्मा। और तुम्हें शरीर में रहते ही अशरीरी बनना है, उसी मुरली में था। नींद क्या है? बचाव है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे दिन भर नींद करते रहो। नींद में तो विकर्म विनाश नहीं होते, भले विकर्म होते नहीं पर विनाश भी तो नहीं होते। हाँ तो हुंडी भरती रहेगी। हाँ वैसे कुछ कुछ संप्रदाय है, जो कुछ कुछ संप्रदाय है वो राधे को ज्यादा मानते हैं। कुछ कुछ संप्रदाय जो वैष्णव वैष्णव अर्थात जो विष्णु के जो भक्त है उन्हें वैष्णव कहा जाता है, उसमें भी राम के भक्त और कृष्ण के भक्त, पहले राम की भक्ति करने वाले और कृष्ण की भक्ति करने वाले। परंतु जो कृष्ण की भक्ति करने वाले में भी कुछ राधे राधे वाले संप्रदाय वाले हैं, जो राधे 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 कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर ओम शांति कहते हैं, वैसे उनकी जगह जाओ तो राधे 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 राधे। हमारे बचपन में भी एक महाराज आते थे जिनका नाम था राधे राधे महाराज, वो भागवत कथा करते थे, राधे राधे महाराज। बहुत बूढ़े थे, उनका नाम ही वो था। और यहां तक दिखाया है जो गोवर्धन पर्वत उठाया वो किसने उठाया? कृष्ण ने नहीं उठाया, वो राधा की दृष्टि से उठा। जो राधा वाले संप्रदाय वाले वो यहां तक मानते हैं, उसको राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, जो एस्कॉन के जो भक्त है वो भी राधा को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो इस तरह से है सतयुग में ये सब नहीं। अम्बा के ज्यादा मंदिर है, अम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तो मुरली तो पॉइंट सो अथा है, तो उसका निरंतर बुद्धि में चिंतन सिमिरन मंथन होते रहे निरंतर, और बीच बीच में फिर साइलेंस में जाते रहे। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की बुलबुल निरंतर टिकलू टिकलू करते रहे। अच्छा, ओम शांति।